ओम शांति। जीवन आपका ईश्वरीय दर्पण कर दिया है आपने, तन मन धन समर्पण। आपके बुद्धिमत्ता का क्या करे वर्णन, स्वस्वरूप द्वारा ब्रह्मा वस्तुओं को भी बना दिया दर्पण। ऐसे भाई जी का वंदन करती है हमारी करतल ध्वनि गुंजन, हमारी करतल ध्वनि गुंजन, हमारी करतल ध्वनि गुंजन। साकार मम्मा बाबा की पालना वैसे कई आत्माओं ने ली, कईयों का ये भाग्य रहा, लेकिन आदरणीय परम श्रद्धेय रमेश भाई जी का भाग्य कुछ और ही भाग्य विधाता ने लिखा हुआ है। आज साकार मम्मा बाबा के अंगत संग रहे ही नहीं, उनके नजरों में पले, उनके गोद में पले, और ऐसे पलते पलते आज हम सभी को भी वो पालना देने के लिए निमित्त बन गए। ऐसे भाई जी का क्या वर्णन करें शब्दों के द्वारा। हर मास ज्ञानामृत पुस्तिका के द्वारा, लेख के द्वारा हम आपसे मिलते रहते हैं। जब आपका लेख पढ़ते हैं तो उसमें से भी हम वाइब्रेशन कैच करते हैं, बुद्धिमत्ता के वाइब्रेशन, बाबा के यज्ञ के प्रति समर्पण भाव के वाइब्रेशन लेख में से भी कैच होते हैं। भाई जी के परिचय के बारे में, मुंबई से 1953 में बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, साकार मम्मा बाबा की पालना ली, और मम्मा बाबा की पालना ही नहीं ली, अति प्रिय यज्ञ के धुरांधर बनकर रहे। लौकिक में आपने LLB किया है, साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप प्रेसिडेंट है, जुरिस्ट विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी है, स्पार्क के चेयरपर्सन है। तो हम सभी भाई जी से लाभान्वित होंगे, आदरणीय रमेश भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। कल हम सब ने इस सीजन की लास्ट अव्यक्त मुरली सुनी, फिर नई सीजन आएंगी अक्टूबर मास में, उसकी भी डेट शादी सबको तो मालूम पड़ ही गया है। कल की मुरली से पहले जो थोड़ी बातें मुझे सुनने में आई, उसके आधार पर मुझे बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, वो याद आई। आप सबने भी वो कहानी पढ़ी होंगी, क्योंकि तो स्कूलों के अंदर जो पुस्तक होती थी, पाठ्य पुस्तक, उसके अंदर आती थी कि एक बाप बेटा जो है वो बाजार में अपने पास घोड़ा जो था, हॉर्स जो घोड़ा जो था, उसको बेचने के लिए निकले। घोड़े को लेकर के जा रहे थे तो लोगों ने कहा ये लोग तो मूर्ख हैं, साथ में घोड़ा होता हुआ वो तो भी पैदल चलते हैं। लोगों की बात सुनकर के बाप को लगा कि मैं घोड़े पर बैठ जाऊं। वो घोड़े पर बैठा, थोड़े आगे गए तो लोगों ने कहा कि इतना कैसा बाप है, खुद घोड़े पर बैठता है और बच्चे को चलाता है। तो लोगों की बात सुनकर के बाप घोड़े से उतर गया और बेटे को बैठाया। थोड़े दूर गए तो लोगों ने कहा कि ये कैसा बेटा है, बाप पैदल करता है और घोड़ा और ये बेटा घोड़े पर बैठा हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बाप बेटा दोनों ही घोड़े पर बैठ गए। तो फिर आगे गए तो लोगों ने कहा कि ये कैसे है, निर्दयी है, एक घोड़े के ऊपर दो दो बैठ करके बेचारे घोड़े को मार देंगे, खत्म कर देंगे, बाजार में कैसे बेचेंगे। बाप ने दोनों ने विचार किया कि खाली ऐसे ही घोड़े को लेके जाते तो भी लोगों ने ऐसा कहा, बाप बेटा तो भी लोगों ने ऐसा कहा, बेटे ने बेटा बेटा तो भी ऐसे कहा, दोनों बेटे तो ऐसे कहा, फिर दोनों ने क्या किया, एक लंबी बांस की लकड़ी लिया और उसके ऊपर घोड़े को बांध दिया और घोड़े को उठा करके जाने लगे। इस प्रकार से ऐसी बातें जो है कल की मुरली के पहले की बातें हैं या मुरली के समय की बातें हैं। क्योंकि जैसे मुरली पूरी हुई एक भाई मेरे पास आया, मैंने कहा आपने आज की मुरली सुनी? कहा नहीं, मेरा ध्यान उसमें नहीं था। मैंने कहा मालूम नहीं आकर किसमें ध्यान था? तो कहा कि मैं तो यही सोच रहा था कि बाबा ने तो कहा था कि मैं मधुबन के सिवाय और किधर भी नहीं आऊंगा, तो कल बॉम्बे में कैसे आए, क्यों आए? उसकी कारण, जिसको संस्कृत में कहते हैं कारण मीमांसा, मतलब तो उसका कारण और उसका रहस्य जानने के लिए कि मैं इसमें ही बिजी हो गया, तो मैंने मुरली सुनी नहीं। मैंने उसको कहा कि आपको मालूम है बाबा का दूसरा भी महावाक्य है कि अंत समय तक हम साथ में चलेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में सब कुछ करेंगे, साथ में ही वतन में जाएंगे और फिर आप बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ में सच्चों की दुनिया में आकर के रहेंगे। तो बाबा का वो भी वरदान था, वो भी महावाक्य था, वो भी वचन था। अगर बाबा कल नहीं आते, कहते मैं तो बॉम्बे में नहीं आऊंगा, आबू में आऊंगा, तो फिर बच्चे यही कहते कि आपने वायदा किया था, वायदा तो आपने निभाया नहीं, इसलिए क्यों नहीं निभाया? और कल वायदा निभाया तो फिर दूसरी बात करके क्यों निभाया, क्यों आए बॉम्बे में, यहाँ क्यों और जगह पर क्यों नहीं गए? इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हमने देखा है कि हमारे कई बहन भाई जो है ना, जिसको हम कहते हैं बाबा के शब्दों में कहें व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो वर्तमान का सुख जो होना चाहिए, कल जो मुरली बाबा ने चलाई, बाबा की प्रत्यक्षता हुई, बाबा की पदरमणी हुई, उसका सुख नहीं लिया, परंतु विचार सागर मंथन व्यर्थ चिंतन के अंदर ही चला गया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से हमारा कई मौका होता है। इसलिए तो बाबा, मुझे याद है अव्यक्त बाबा के सामने जब बाबा ऊपर मेडिटेशन हॉल में आए थे तो एक माता सामने ही बैठी हुई थी, सामने ही बैठी हुई थी तो वो रो रही थी, एकदम बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो बाबा ने उसको कहा बच्ची क्यों रो रही हो? तो माता ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा नसीब भी ऐसा है, आप जब साकार में थे तब मैं अभी आपसे मिली नहीं, मैंने वो साकार में आपसे मिलने का सौभाग्य गंवाया दिया, इसलिए मेरे को अपने अपने नसीब भी कम नसीब के ऊपर ही रोना आता है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो ब्रह्मा अव्यक्त बाबा ने उनको कहा कि बच्ची अभी तो तुम मेरे सामने साकार में बैठी है, तो वर्तमान में तो साकार में सामने बैठी हुई तो उसका तो सुख ले ले, वर्तमान का सुख जो ले ले, बाकी भूतकाल की बातों को याद कर करके वर्तमान के सुख से वंचित क्यों होती है? हम सब भी ऐसे ही हैं, भूतकाल की बातों को हम जल्दी नहीं भूल सकते, ये वास्तविकता है। और भूतकाल की बातों को लेकर के क्या होता है, हमारे आपसी संबंध जो है, व्यवहार जो है, कारोबार जो है, उसके अंदर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जो सुखद पल हो पर इंसिडेंट्स होते हैं वो याद नहीं रहते, दुख की बात होती है ना, वो दुख की बात इतनी रहती है कि सारी जिंदगी उसके आधार पर हम समय बर्बाद करते रहते हैं। और इसीलिए ये भूतकाल को भूत कहा हुआ है, भूतकाल अर्थात जो काल बीत गया वो कभी कभी भूत बनकर के हमको परेशान करता है, और उसके कारण उस परेशानी से अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। और इसके कारण फालतू में रूमर्स नहीं फैलानी चाहिए। कल के दिन के लिए कितनी रूमर्स थी, मैं यहाँ पर आया 5:55 को निकलने के लिए, 6 बजे हमको पहुँचना था, उस टाइम पर एक का फोन आया कि आपको मालूम है रमेश भाई? मैंने कहा नहीं, क्या बताओ? क्या गुलजार दादी जो है ना चार्टर फ्लाइट से आबू रोड के एरोड्रम पर उतर गई है और 10 मिनट में आएंगी, आप जाकर के सबको सुनाना कि गुलजार दादी आ गई है। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है। कहा नहीं, आपको नहीं मालूम है, एकदम मैं सीक्रेट है, प्राइवेट है, और गुलजार दादी आ गई है। मैं तो चुप रहा। तो क्या हुआ? हाँ, यहाँ तो गुलजारदा जी आई नहीं थी, पर ऐसी रूमर्स फैलती जा रही थी। मैं यहाँ योग कर रहा था उस टाइम पर, एक भाई ने आकर के बताया, निर्भय भाई अहमदाबाद गए हैं, अब बॉम्बे से अहमदाबाद गए हैं, अहमदाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। और हम सब ने कल देखा कि बॉम्बे के अंदर निर्भय भाई जो है दादी गुलजार के सामने, या तो कहे भगत बाप दादा के सामने, वहां पर ही थे। इतनी अफवाहें फैल रही है। कल दोपहर में 3 बहनें और एक भाई आया और कहने लगा कि अभी बाबा का पवित्रण बंद हो गया, अभी बाबा कभी नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों, आपने आपको किसने बताया? कहा आज नहीं आया तो अभी कभी नहीं, आज नहीं, वो कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, आपको मालूम है ना बाबा का स्लोगन, अब नहीं तो कब नहीं, था अब नहीं, आज नहीं तो कब नहीं, कभी भी नहीं आएगा। मैंने कहा भाई साहब ज्ञान की बातें जो है कि कहाँ किसको अप्लाई करना चाहिए वो नक्के करना चाहिए, अब नहीं रहे, आज नहीं आया, मजबूरी थी, बीमारी थी दादी की। तो उन्होंने बताया क्या बीमारी थी। मैंने कहा मैं 2 दिन पहले ही दादी जी को मिल के आया हुआ हूँ, दादी को इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन के कारण तकलीफ होती है चलने में, कमजोरी आ जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत देते हैं इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। मैं खुद ही अनुभवी हूँ, मुझे भी यहाँ आबू में ही 4 बार किडनी का इन्फेक्शन हो गया और 4 बार मैंने अनुभव किया। तो मेरा डॉक्टर भी कहता था कि आप आबू में जाते हो, आबू में ही आपको इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर क्या बीमारी होती है। दादी को भी यहाँ ही, निर्भय भाई को भी यहाँ ही इन्फेक्शन हुआ। कितने मिलने वाले आते हैं, उसमें भी दादियों के प्रॉब्लम तो बड़ी होती है, दादियों के गोद में माताएं जाती है, बहनें जाती है, सब प्रकार की बहनें भाई बहनें जाती हैं, तो किसी न किसी का कैसे इन्फेक्शन लग जाता है क्या मालूम। मातेश्वरी जी हमारे घर में थे 18 मार्च, तो मातेश्वरी जी को मैंने कहा कि आपके गोद में सब बाबा के बच्चे आते हैं तो आपको क्या फील होता है? कहा हमारी परीक्षा होती है। मैंने कहा क्यों? कहा कहीं ऐसे आते हैं कपड़े भी पुराने पहरे होते हैं, पसीना वाले होते हैं, कभी नहीं तो कब सुबह ने स्नान किया होता है शाम को मिलते हैं, पसीना वाले होते हैं, क्या क्या होता है, और ऐसे भी आते हैं फिर भी हमें बच्चों को अपनी गोद में बिठा करके उसको स्नेह देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसी बातें जो होती है कि हम अपना भविष्य जो है, हमारे दादियों का जो है, हमारे साथ का संगीत जो भी है संगठन में है, इन सब का हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने स्नेह के आधार पर, अपने प्यार के आधार पर इन्हों को हमारा इन्फेक्शन भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए ये एक सावधानी की बात आप सबको बताना चाहता था कि ऐसी बात नहीं है कि अभी बाबा नहीं आएंगे, अंदाज से झूठी बातें फैलाते रहते हैं। और कल बाबा ने एक बात तो पक्की रखी, बॉम्बे में आए, पहले भी बॉम्बे में आते थे, बहुत बार आए हुए हैं बॉम्बे में, प्रदर्शनी की शुरुआत जो हुई तब दादी पुष्प संता के तन में आए थे बाबा, ऐसे बहुत सी बार आए थे। दीदी मनमोहिनी का ऑपरेशन था उसके अगले दिन जो जब हॉस्पिटल में दाखिल हुए उसके पहले भी बाबा गुलजार दादी बड़ी दीदी को विदाई देने के लिए आए थे, इस प्रकार से आते ही रहते थे। परंतु क्या हो गया, हम लोगों ने ही बाबा का आने का डुप्लीकेट कर दिया, शुरू किया। आपको मालूम नहीं है वर्तमान में भी एक स्थान पर एक भाई बता रहा है सबको कि मेरे तन में शिव बाबा आते हैं, मेरे तन में अव्यक्त बाप दादा आते हैं। और लोग भी इतने भोले भाले होते हैं कि उस भाई को 60 एकड़ जमीन दान में भी मिल गई, 60 एकड़ जमीन दान में मिल गई। शनिवार रविवार बाबा का अवतरण होता है, वो मुरली चलाता है और 2000-3000 लोग इकट्ठे वहां हो जाते हैं और कहता है कि मेरे तन में शिव बाबा आते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। इसलिए बाबा को ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, नहीं तो क्या होता, कई जगह पर कहीं कहते थे हमारे मम्मा आती है, कई जगह हमारे में बाबा आता है, कई जगह पर हमारे में देवी आती है, क्या क्या होता है, किस प्रकार का होता है। लोग इस प्रकार से हम सबकी जो श्रद्धा जो होती है ना, श्रद्धा को अंधश्रद्धा कहते हैं, अंधश्रद्धा का फायदा लेते हैं और अपने बात को अपने विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अभी भी मैंने आपको बताया ना, अभी भी ये चल रहा है, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, उस भाई के बारे में कि ऐसा क्यों करता है। तो सब कहते हैं कि नहीं वो तो आता ही है, इसे आप समझ सकते हैं 60 एकड़ जमीन उसको दान में मिल गई है। इस प्रकार से होता है। कल बाबा ने तो क्या किया, अपना रथ तो वही मुकरर रखा, उस मुकरर रथ में ही बाबा आए, स्थान इमटीरियल पर तो मुकरर है। बाबा ने वायदा किया था कि मैं बच्चों को कल 10 तारीख को मिलने को आऊंगा, तो बाबा को वायदा निभाना था। हाँ, इसलिए हमारे गीतकारों ने अगर वो गीत बजाया होता, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, गीत आपको सुना होगा, वो निभाया बाबा ने, निभाया। और बाबा ने अपने नियम को भी, अपने विचार को भी, अपने जो पुरानी बातें उसको भी तोड़ करके, जैसे महाभारत में आप लोगों ने अनुभव किया हुआ होगा, श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध के मैदान में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु विश्व पितामह ने इतना युद्ध किया, इतना युद्ध किया, तो 2 बार जो है श्री कृष्ण को अपना विचार जो है, अपनी जो प्रतिज्ञा जो है, अपने जो कहा हुआ जो था, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो उठाना पड़ा। क्योंकि लोक संग्रह अर्थ जो है वो कार्य करना ही पड़ता है। लोक संग्रह अर्थ अगर परिवर्तन नहीं किया तो क्या होता है। कौरव पांडव के युद्ध में यही बात होती है, लोक संग्रह अर्थ अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भीष्म पितामह असफल रहे। भीष्म पितामह ने नक्की किया था कि कोई भी स्त्री मेरे सामने युद्ध करने को आएंगी मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा। उसके सामने शिखंडी आया तो शिखंडी तो पुरुष था, इस जन्म पिछले जन्म में स्त्री था, परंतु फिर भी उसके सामने भीष्म पितामह के सामने आया तो उसने युद्ध नहीं किया, और अर्जुन ने पीछे से तीर लगा करके उनको घायल किया और वो बाण सैया पर गिर पड़े। ऐसे ही द्रोणाचार्य सर सेनापति थे, परंतु क्या करें, मेरा बच्चा मेरे लिए महान है, मेरा बच्चा है, मैं सर सेनापति हूँ या कुछ भी होगा, मेरा बच्चा नहीं है जिंदा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। उसने पूरी इंक्वायरी भी नहीं किया और अपने आप बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने जाकर के उनकी हत्या कर दी। कर्ण जो है, कर्ण दानवीर था, उसको मालूम था, उसके पिता सूर्य ने कह दिया था कि कल तेरे पास इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश में आएंगे, तेरे जो कवच कुंडल जो उसको मांगेंगे, आप उसको नहीं देना। परंतु क्या करें, कर्ण ने कहा मैं तो दूंगा दूंगा दूंगा, और उसके कारण क्या हो गया, कवच कुंडल रहित कर्ण जो था उसने इस प्रकार से किया। और सामने में पांडव लोग देखिए, पांडव युधिष्ठिर जो है असत्य नहीं बोलते थे, परंतु फिर भी दुर्योधन अपने कृष्ण भगवान ने कहा उसको कि तुमको लोक संग्रह अर्थ आपसे समाज बड़ा है, आपसे आपकी फर्ज है, जिम्मेदारी जो है वो बड़ी है, और इसलिए अपना युधिष्ठिर को बोलना पड़ा, नरो हुआ कुंजरो हुआ, आपको मालूम होगा महाभारत में भीम भी अधर्म युद्ध पर भीम ने किया, गदा युद्ध के अंदर नीचे पेट के नीचे से ऊपर गदा नहीं मार सकते, तो उसको मारना पड़ा। अर्जुन ने भी शिखंडी को आगे रख करके अधार्मिक युद्ध करना पड़ा। अर्थात लोक संग्रह जो है वो बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी का निभाना बहुत बड़ी बात है। और कल बाबा ने वो सिद्ध करके दिखाया कि मैंने जो वायदा किया था कि साथ में चलेंगे, करेंगे, मिलेंगे, करेंगे, जो मैंने वायदा किया था कि 10 अप्रैल को मैं मिलूंगा, बाबा ने जो टाइम दिया था, तो वो उस प्रकार से उसको निभाया। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए प्लीज हमारी आप सबको रिक्वेस्ट है कि झूठी रूमर्स अफवाहें मत फैलाओ। हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, जो अफवाहें फैलाते हैं उसका फोन नंबर भी है, सब कुछ रहते हैं, परंतु हम जानते हैं क्या करें, हमारा दैवी परिवार है, इस परिवार के अंदर कहीं नेगेटिव भी विचार करते हैं, कहीं पॉजिटिव विचार करते हैं। नेगेटिव विचार वालों का हमारा नम्र निवेदन है कि प्लीज ऐसी नेगेटिव बातों को फैला करके नहीं करिए। कभी कभी तो हमको लगता है कि ये हमारा शांतिवन जो है ना, ये शांतिवन नहीं है, अशांतिवन है, क्योंकि यहाँ से ही रूमर जाती है। आपको मालूम होगा अभी यज्ञ की सेवा की प्लानिंग की मीटिंग हुई, उसके अंदर क्या हुआ, शारदा बहन ने ही सबको बताया था कि एक SMS ईमेल सब जगह पर जा रहा है कि अभी बाबा अगले सीजन में 4 बार आएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे झूठे ईमेल जो है सब जगह पर गया, और शारदा बहन को चालू मीटिंग के बीच में कहना पड़ा ये झूठा ईमेल है, प्लीज उसको आप मान्यता मत दो। और उसके बाद मुन्नी बहन ने बाबा के अगले सीजन की 8 तारीख जो बता दिया, तो कल भी मैंने आपको बताया ना, वो भाई आया क्या, वो 8 तारीख वाली गलत है, अगले सीजन में बाबा नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसी कैसी बात करते हो आप, त्रिकालदर्शी हो क्या? परंतु क्या करें, हमारे ही विचारधारा में नेगेटिव बातें ज्यादा जल्दी आती है, पॉजिटिव बातें नहीं आती है। और फिर क्या होता है कि नेगेटिव बातों का हम प्रचार और प्रसार करते रहते हैं। कल बाबा भी देखो आए, कितनी सुंदर बातें कही है, शॉर्ट में जो कहना था वो कह दिया कि स्वरूप, स्वस्वरूप और भविष्य का स्वरूप और ये संगम युगी स्वरूप। और उसमें संगम युगी स्वरूप कितना महान है, संगम युग की महत्वता इम्पोर्टेंस कितनी सुंदर से बाबा ने बताई कि ये संगम युग का जो स्वरूप जो है वही श्रेष्ठ है। संगम युग की महानता जो है उसको समझो कि संगम युग, उसकी पिछली मुरली में जो है 15 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा कि आंखें जल करके ये दिन जो है बाबा के साथ ये मुलाकात जो है, बाबा का ये दिव्य अवतरण जो है, वो बाबा का मिलन जो है वो आपको याद आएगा। तो इस प्रकार से ये याद आएगा, ये याद की दुनिया में हम रहने वाले हैं। तो इसलिए जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करिए। ड्रामा का ज्ञान हम सबको है, परंतु क्या होता है, हम ड्रामा का ज्ञान औरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अपने लिए तो अपनी मनमत के ऊपर जो विचारधारा होती है उसको ही करते रहते हैं। और परिणाम रूप क्या होता है कि जो संगम युग का जो सुख लेना चाहिए, संगम युग के अंदर अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध या भाग्य बनाने का जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं करते हैं, करुण वास्तविकता है। कल जो बाबा ने मुरली सुनाई उसके अंदर डबल फॉरेनर्स के साथ बात किया हुआ है, बहुत सुंदर बात किया था, परंतु समय नहीं था इसलिए वो बताया नहीं गया। मैं आपको बताता हूँ, कल डबल फॉरेनर्स के साथ बहुत अच्छी बात की, पुरुषार्थ के सिवाय तीव्र पुरुषार्थ की भी बात बाबा ने कही। कल की मुरली जो है रिवाइज कोर्स की है, 20 मार्च 2012 की थी, उसके अंदर बाबा ने डबल फॉरेनर्स को बहुत सुंदर क्या है कहा, डबल फॉरेनर्स नहीं कहा, डबल विदेशी नहीं, डबल विदेशी कहा, डबल से डबल होते जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि स्व ऊपर, समान के ऊपर और अपनी वृत्ति के ऊपर सबका अटेंशन अच्छा है और अच्छा रख भी रहे हैं। यज्ञ स्नेही भी है और यज्ञ का स्नेही सहयोग का पार्ट भी अच्छा बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा जबर विदेशियों को अनेक बार की मुबारक देते हैं, पुरुषारथी बन के रहना। बाबा ने फिर आगे क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट बात है, पुरुषारथी नहीं परंतु अभी तीव्र पुरुषारथी रहने का समय है, तो अभी साधारण पुरुषारथी नहीं बनना। सदा चेक करना कि मेरा पुरुषार्थ तीव्र है, सदा चेक करना, अपना चेक करने की बात है। साधारण तो नहीं हो गया है, वैसे अभी समय भी सूचना देता है कि तीव्र पुरुषारथी बनने का है। तो बाप दादा खुश है, परिवार भी खुश है, सबको मुबारक देते हैं, खुशी है बाप को। कितने देशों में देखो इकट्ठे, कितने देशों के इकट्ठे हुए। तो कल भी अव्यक्त मुरली के अंदर भी बाबा ने जो डबल फॉरेनर्स को कहा है कि पुरुषारथी नहीं परंतु तीव्र पुरुषारथी। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने आप को चेक करें कि हम साधारण पुरुषारथी है या तीव्र पुरुषारथी है। इस सीजन के अंदर भी बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कि अभी क्या है, अभी पुरुषार्थ की कौन सी गति होनी चाहिए, तो बाबा ने कहा उड़ती कला का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। उड़ती कला आप जानते हैं, 3 प्रकार की कलाएं हैं, चलती कला, दौड़ती कला और उड़ती कला। तो उसमें बाबा ने वार्निंग दे दिया कि उड़ती कला का पुरुषार्थी समय पर या समय से पहले लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम अपने आप से पूछें कि हम इतना ज्ञान सुनते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपनी पुरुषार्थ की गति उसको देखते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर सोचे कि क्या हमारी पुरुषार्थ की स्पीड जो है, गति जो है, जैसे कल बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी, बाबा ने इस सीजन की मुरली में कहा उड़ती कला का पुरुषार्थ, तो हमारा उड़ती कला का पुरुषार्थ है या नहीं इसको सोचने का है। अगर नहीं है तो कब क्या होगा। हाँ, संगम युग के बाबा ने वहां भी बताया, कल भी बताने बाबा ने बताया, कल की मुरली में भी जो रतन मोहिनी दादी ने बताया, जैसे कल बाबा ने कहा वाह संगम युग का वरदानी समय, वाह ये संगम युग जो है वो वरदानी समय है। बाबा के ज्ञान के आधार पर ही हमें मालूम पड़ा कि ये संगम युग है, नहीं तो हम क्या मानते थे। आप सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं वही मानते थे कि कलयुग अभी बच्चा है, यही मानते थे ना, किसी को मालूम था। हाँ के पास कि विश्व परिवर्तन होने वाला है, हम तो यही समझते कलयुग अब बच्चा है, अभी तो बहुत समय बाकी है, इस प्रकार से मानते थे। परंतु बाबा के ज्ञान के आधार पर और बाबा का दिव्य अवतरण के आधार पर हमें मालूम पड़ा कि ये समय संगम समय है। पुराने जमाने में बाबा यहाँ से भाषण के टॉपिक्स भेजते थे, उसमें एक बाबा का बहुत फेवरेट टॉपिक था, बाबा का टॉपिक था टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक, जो सृष्टि चक्र जो है ना उसमें आपने स्टडी किया होगा, घड़ी जो है घड़ी के दो कांटे जो है ना उस प्रकार से थोड़ा थोड़ा नजदीक है, और उसको बताया कि इतना छोटा सा संगम युग है। तो ये टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक ये बहुत प्रसिद्ध बाबा का एकदम फेवरेट टॉपिक था कि सबको दुनिया वालों को बताओ कि अभी विश्व परिवर्तन का समय बाकी रहा है, बहुत जल्दी विश्व परिवर्तन होगा, और विश्व परिवर्तन का कार्य के लिए मैं इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ। तो इस प्रकार से इस कार्य को हमको उठाना चाहिए कि हम अपने आप को और सारी दुनिया को बाबा का ये संदेश देते हैं या नहीं। और इसीलिए ही जैसे गीता में भी हम दूसरे अध्याय में गीता में कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही कहा क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्याज्य, हृदय की दुर्बलता को त्याग करके हे नरशार्दुल तू युद्ध करने की तैयार हो जाए। हम सबको कृष्ण का ये संदेश, गीता का ये संदेश कि हम अपने हृदय की दुर्बलताएं जो है, हमारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज जो है, जो कल दो दिन के अंदर हमने बहुत अनुभव किया, बहुतों का नेगेटिव टेंडेंसी का अनुभव किया, हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज नेगेटिव टेंडेंसियों को छोड़ो, संगम युग का सुख ले लो और संगम युग के अंदर श्रेष्ठ भाग्य बनाओ। बहुत सुंदर बातें बाबा ने संगम युग के लिए कही हुई है, कल भी कहा कि साहब वह संगम युग का भाग्य वह। तो इस प्रकार से बाप दादा भी देख रहे हैं कि हर एक बच्चा भी अपने भविष्य स्वरूप को जानकर हर्षित हो रहा है, अपना भविष्य, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम लोगों ने जब पहली प्रदर्शनी बनाई योग की प्रदर्शनी बनाई तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा था कि बाबा ये प्रदर्शनी का जो अंतिम चित्र, जो लास्ट चित्र जो है वो आप बना करके भेजिए। तो बाबा ने वो चित्र भेजा था बना करके, जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है, तो पृथ्वी जो है अपनी मृत्यु सैया पर खड़ी है, सोई हुई है, ऊपर से एटम बम हाइड्रोजन बम गिर सकता है, और संत महात्मा वो कहता है अभी तो कलयुग बच्चा है, इस प्रकार का चित्र जो है बाबा ने बना करके भेजा था। वो अभी बातों के सेंटरों के ऊपर वो छपा हुआ भी आपको देखने में आया होगा, और उसके नीचे, उस चित्र के नीचे बाबा ने लिखा था कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में, और बाबा ने लिखा कि आपका भविष्य न और कोई बना सकता है न और कोई बिगाड़ सकता है, आप अपने भाग्य के भाग्य विधाता हो। तो हमारे भाग्य का हम भाग्य विधाता है, हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, और हमारा भाग्य न और कोई बिगाड़ सकता है न और कोई बना सकता है, हमें ही अपना भाग्य बनाना है, और जितना हम चाहे इतना हम बना सकते हैं, इतनी हमको बाबा ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है। और तो क्या करें, हमारी मातेश्वरी ये घर में थी, वो बता रही थी कि बाबा सबको समान तक आगे बढ़ने की देते हैं, सबको, बाबा का समाजवाद बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी बात है सबको आगे बढ़ाने, क्योंकि बाबा ज्ञान सबको एक साथ में देता है, किसी को आगे किसी को पीछे ऐसे नहीं देते, सबको मुरली के द्वारा ज्ञान देता है। परंतु बाबा ने मुरली में ही कहा हुआ कि बाप नंबर नहीं बनाते हैं, पर बच्चे अपने पुरुषार्थ के अंदर ही आगे पीछे हो जाते हैं और अपना नंबर बना लेते हैं। तो जब हम अपने नंबर को हम ही बना सकते हैं तो पीछे के नंबर क्यों लेवे? थोड़ा तो हम अपना भविष्य का ख्याल रख करके अपना भविष्य का श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का प्रयत्न तो करें। तो ये बहुत अच्छी सावधानी कल भी बाबा ने हम बच्चों को भी कही, मुरली में भी, और जो रिवाइज कोर्स के मुरली है उसमें बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो हम सब अपने पुरुषार्थ की गति को, विधि को जान लें कि हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र है, हम उड़ती कला के पुरुषार्थी है। अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? उस प्रकार से पॉजिटिव बातों के ऊपर चिंतन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, तो ही हम श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? बाबा ने जैसे कहा ना, अपना भविष्य स्वरूप ब्रह्मा बाबा की हमने कई बार मुरली में देखा सुना हुआ था, ऊपर हिस्ट्री हॉल में बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, तो वहां पर ऊपर में त्रिमूर्ति था, बीच में श्री लक्ष्मी नारायण था और नीचे में श्री कृष्ण था, राधे था। तो बाबा कहते थे मैं कई बार देखता हूं कि मैं भविष्य में जाकर के ये बनूंगा, ये कृष्ण बनूंगा, ये मिष्णु बनूंगा। इस प्रकार से बाबा को अपना भविष्य का स्वरूप का बहुत ही ख्याल था, ध्यान था, और उस प्रकार से लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है। हम भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा सोचे हम क्या भविष्य बनेंगे, हम त्रेतायुगी बनेंगे या सतयुगी बनेंगे। त्रेतायुगी के लिए बाबा ने कहा हुआ है, त्रेतायुगी के लिए उसको धनुष्य बाण दिए हुए हैं। धनुष्य बाण इसलिए वो सिंबल है, बाबा ने बताया हुआ है उसके ऊपर के, जो युद्ध करते ही रहते हैं सबके साथ, युद्ध माया के साथ युद्ध करना और बात है, आपस में युद्ध करते हैं, अनेक प्रकार की बातों से युद्ध करते रहते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो युद्ध करने वाले होते हैं, जीत करने वाले होते हैं, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे जो होते हैं उसको बाबा ने कहा ये योद्धा है, ये योद्धा है, और ये योद्धा युद्ध करने में ही बिजी है, और इसलिए क्या होता है, संगम युग का सुख नहीं ले पाता है। जो संगम युग का सुख लेता है उसके जीवन में उमंग उत्साह सदा ही रहेगा, उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो माया को समझ जाता है और माया से युद्ध कर सकता है, और माया जीत जगत जीत बन सकता है। हम सब अपने आप के पूछें कि हम माया जीत जगत जीत है? बाबा ने बता दिया है कि अंतिम परीक्षा में दो प्रश्न आने वाले हैं, सबको मालूम है, बाबा के मुरलियों में आया हुआ है, जो गीता के अंदर भी लास्ट में है। अर्जुन कहता है नष्टो मा स्मृति लब्धा शिष्य स्नेहम साधि ताम ताम प्रपन्नम, अर्थात मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ और स्मृति लब्धा, मेरी जो स्मृति जो थी, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के संतान हूँ, इस प्रकार की मेरी स्मृति जो है वो मुझे वापस मिल गई है। तो ये दो प्रश्नों का अंतिम समय में जवाब देना पड़ेगा कि हम नष्टो मोहा बने हैं, हम मोहजीत बने हुए हैं। मोह जो है ना, मोह की रग बहुत पावरफुल होती है। भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है आशा नाम आश्रित कृष्ण श्रृंखला, आशा नाम की जो है सोनेरी जंजीर है उससे बहुत कम लोग मुक्त होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और फिर भी दौड़ने के प्रयत्न करते हैं आशा के पीछे, आशा 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 करके रखते रहते हैं। इसलिए कहते हैं, मम्मा ने भी कहा हुआ है कि आप सब घर बार छोड़ करके आते हो, क्योंकि बाबा का ज्ञान में आते हो, लोहे की जंजीर तो आप सब छोड़ सकते हो, पर तो मोह की जंजीर जो है, मोह की जंजीर को छोड़ना, ये सोनेरी जंजीर जो है उसको छोड़ना बहुत कठिन बात है। तो इसलिए सोचो तो सही। अभी की बात बताऊं, पिछली मुरली में 15 तारीख की मुरली में एक भाई आया तो मेरे को कहा, मेरे को यहाँ मेरा पोता बहुत याद आता है। मैंने कहा क्यों? कहा उसकी बहुत मेरे को याद आती है, बाबा को याद करता हूँ, मेरा पोता ही सामने आता है, ग्रैंड सन, पोता मना ग्रैंड सन ही याद आता है। तो क्या होता है, हाँ अपने परिवार की याद आता है, कारोबार याद आता है। आपको मालूम होगा दुर्योधन युधिष्ठिर आदि सभी कौरव पांडवों का द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया कि वृक्ष के ऊपर एक पक्षी रख दिया और उसके अंदर उसकी आंख में डायमंड रखा था और सबको कहा कि ये पंखी की आंख जो है उसके ऊपर तीर लगा करके करिए। युधिष्ठिर आया, उसने भी कहा कि मुझे तो सारी दुनिया दिखाई पड़ती है, सिर्फ ये नहीं। और इस प्रकार से दुर्योधन आया, सभी आया, सबको सब दुनिया दिखाई पड़ती है। तो हम भी ऐसा ही है, जब तक मोह जीत नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सारी दुनिया आएगी, दुनिया की बातें आएगी, दुनिया की प्रॉब्लम आएगी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। इस पीछे 2-3 दिन में हमारे पास अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के भाई बहने लेकर के आए। मैं आपको क्या बताऊं, एक भाई प्रॉब्लम लेकर के आया कि रमेश भाई मेरी युगल जो है ना वो ज्ञान में नहीं चलती है, वो प्रॉब्लम करती है। मैंने कहा क्या करती है, तो कहा कि हम सबको लहसुन और प्याज नहीं खाने का है, मेरी युगल जानबूझ करके सब्जी में सब में लहसुन और प्याज डाल करके मुझे खिलाती है कि खाना पड़ेगा। मैंने कहा आप अपने हाथ से बना लो, तो कहा मुझे हाथ से बनाना नहीं आता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं आता है तो बाबा ने कहा है दृष्टि दे करके खाओ। इस प्रकार से क्या क्या होता है परीक्षा घर में रहने वालों के, क्या बताऊं आपको, परीक्षाएं हैं। परंतु परीक्षा आने से क्या होता है, आगे बढ़ने की बातें होती है। गुलजार दादी जब रशिया में गए थे तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर एक अखबार वाले ने पूछा कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या करते हो, क्या सोचते हो। हम सबके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा सोच क्या होना चाहिए। तो गुलजार दादी ने जो जवाब दिया उस प्रकार का हमारा सोच होना चाहिए। गुलजार दादी ने वो अखबार वाले को कहा कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको प्रॉब्लम नहीं समझते, उसको हम परीक्षा समझते हैं। और जो होशियार विद्यार्थी होता है वो जानता है कि हम परीक्षा में पास होंगे तो क्या हो गया, आगे का स्टैंडर्ड में ऊपर हमारी उन्नति होगी, हमारा आगे का पढ़ाई का हमारा निमित्त हम बनेंगे। तो इसलिए आगे पढ़ाई करने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने परीक्षाएं आती है, इसलिए परीक्षा को हम प्रॉब्लम्स नहीं समझते। हम सब भी ऐसे ध्यान रखें कि हमारे सामने जो भी समस्याएं आती है, जो भी परीक्षाएं आती है, उस परीक्षा के द्वारा हम अपने आप को उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं। या फिर वो जंडी जो है मकड़ी की जाल जैसे होती है ना, इस प्रकार के मोह के जाल के अंदर हम फंसे रहते हैं। कईयों के पास मोह की जाल होती है, कईयों के पास धन की जाल होती है, कईयों के पास क्या क्या होता रहता है। एक साकार की मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपके पास आपका वर्तमान जीवन के लिए और आपका परिवार का वर्तमान जीवन के लिए पर्याप्त धन है तो वर्तमान के अंदर नया धन बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ के बदले में भविष्य की कमाई के लिए यथार्थ पुरुषार्थ करो। हम सब अपने आप से पूछें कि हम सब अपने भविष्य का पुरुषार्थ के लिए, भविष्य का प्रारब्ध के लिए यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं, या अभी भी हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे हुए हैं और वर्तमान की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक साकार मुरली बाबा ने कहा है कि बच्चे ज्यादा वर्तमान की समस्याओं में ही मस्त रहते हैं, उसको ही दूर करने में प्रयत्न करते हैं। बाबा ने कहा है कि जैसे रास्ते में पहाड़ी होती है तो पहाड़ी को तोड़ करके आगे जाने के लिए क्यों ऐसा मेहनत करते हो, उसके साइड में से चले जाओ। हम क्या करते हैं, जो परीक्षा आती है, समस्या आती है, उसको तोड़ करके उसके ऊपर मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं साइड सीन के रूप में उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जो अनेक युक्तियां बताई है बाबा ने, उस प्रकार की युक्तियों को हम करते हैं। कल की मुरली में जो बाबा ने जो रिवाइज कोर्स की मुरली है ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है। अब तक जितनी भी अव्यक्त मुरलियां होती थी ना, उसके अंदर बाबा सबको याद प्यार नहीं देते थे, परंतु ऐसे जो बच्चे जो है उसको याद प्यार देते थे। साकार मुरली में एक बात अच्छी होती थी, बाबा सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते करते थे। इस प्रकार से कल की जो रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है ना, उसमें बाबा ने सबको याद प्यार दिया है। बाबा ने कहा है चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, सभी के प्यार की खुशबू मधुबन पहुंच रही है। तो सभी को अभी सुनिए बराबर, तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों के में सुखी लाएगी, दुखियों को सुखी करना है। यह सुखी करने का संदेश दे करके सबको सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता हो और तीव्रता और तीव्रता लानी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकारो। सबको पहली बार मैंने पहली बार देखा कि बाबा ने अव्यक्त मुरली के अंदर सबको एक साथ में, जैसे पहले तो नहीं था, जो जिसको कंडीशन करते थे उनको ही याद प्यार देते थे, इसके बदले में कल बाबा ने सबको याद प्यार दिया। तो ये भी एक खूबी की बात है, समय समय के साथ बाबा भी कैसे परिवर्तन करता है। अगर बाबा समय समय के साथ परिवर्तन करता है तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें होती है। मैं अभी हमारे साथ में इस वर्ष की जो सेवा की प्लानिंग की मीटिंग हुई उसके अंदर एक बात की चर्चा हुई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हुआ हूँ। इस वर्ष जो बातें हुई कि सहज राजयोग के द्वारा स्वस्थ और संपन्न जीवन, उस प्रकार से थीम रख करके उसके ऊपर सेवा करने का है। और उसके अंदर सहज राजयोग की बात इसलिए निकाली गई क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो थे, जो है, जब यूएन में गए तो उन्होंने जब यूएन में जाकर के एक प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए, वो उन्होंने प्रस्ताव रखा अपने प्रवचन के अंदर। बाद में G20 दुनिया के 20 बड़े बड़े देशों के नेताओं की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई तो वहां पर भी उन्होंने यही अपना प्रस्ताव दोबारा रखा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत के यूएन में प्रतिनिधि थे, इन्होंने उस बात को उठाया, दुनिया के सभी देशों के साथ संपर्क किया और जिन्हें यूएन की सर्वसाधारण सभा जो हुई उसके अंदर सबने सर्वानुमति से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने का नक्की किया। ये भी बाबा की बहुत सुंदर हमको एक सेवा का चांस दिया हुआ है। 21 जून का आप लोगों ने कैलेंडर नहीं देखा हुआ होगा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। 21 जून जो है रविवार आता है, 21 जून रविवार आता है और तीसरा संडे आता है। आप सबको मालूम है हम हर तीसरे संडे को क्या करते हैं, मालूम है ना क्या करते हैं? शाम को अंतर्राष्ट्रीय योग करते हैं। जो करते होंगे वो हाथ तो खड़ा करें, अंतर्राष्ट्रीय योग जो होता है। तो इस प्रकार से देखो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बाबा ने चांस दिया। और कैसा चांस दिया, विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि वहां जो थे यूएन की सर्वसाधारण सभा के अंदर, सबने कहा कि हाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना चाहिए। एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि योग के अस्तित्व को, योग के कारोबार को विश्व की सरकारों ने, विश्व की यूएन की जनरल सभा में, सर्वसाधारण सभा में उसको मान्यता दी गई है। दूसरा भी आपको बताऊं खुशखबरी कि इस वर्ष के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया उसके अंदर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जो था उसके अंदर पहले 3-4 था कि गरीबी को दूर करने का, पढ़ाई कराने का और तंदुरुस्ती बढ़ाने का, या तो और भी ऐसी किसी प्रकार के कारोबार करने का। ये 4 लक्ष्य के चैरिटेबल लक्ष्य के अंदर एक 5वां लक्ष्य इस वर्ष के बजट के अंदर भारत सरकार के वित्त मंत्री ने रखा है कि योग जो है, योग भी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है, योग भी धर्मादाय कर्म करने की चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए योग की बात को भारत सरकार ने रिकग्नाइज किया हुआ है। तो योग के कारोबार करने वाले को भी इस प्रकार से चैरिटेबल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और राज्य आश्रय मिल रहा है, सरकार के द्वारा ये बात हो रही है। मैंने मीटिंग के अंदर भी बताया था कि राज्य आश्रय मिलता है तो कारोबार बहुत फास्ट होता है। गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल है, गौतम बुद्ध ने बुद्ध गया के अंदर वहां जाकर के तपश्चर्या की और फिर वो गौतम बुद्ध बन गए और फिर उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकले। बहुत मेहनत किया परंतु इतना जो उनके प्रचार की जो स्पीड जो थी इतनी होती नहीं थी, वहां पर अशोक का राज्य था, सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक को कुछ गलती हुई थी, तो एक दिन के लिए उसने एक किसी को राजा बनाया था, और उस टाइम पर अशोक, सम्राट अशोक से कोई एक बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उसको मृत्यु दंड देने का नक्की हुआ कि कल शाम को सूर्यास्त समय पर उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो बौद्ध धर्म की एक साध्वी थी, वो घंट के ऊपर पहुंच गई, और घंट का घंटनाद न हो उसके कारण वो उसके साथ चिटक गई, और इसलिए कारण क्या हुआ, सूर्यास्त के समय पर घंटनाद हुआ ही नहीं, घंटनाद हुआ ही नहीं, इसके कारण क्या हुआ, अशोक की, अशोक को मृत्यु दंड नहीं मिला। और फिर वो बहन मृत्यु सैया पर थी, तब अशोक, सम्राट अशोक उसके पास जाता है और पूछता है कि बहन मैं आपके लिए क्या करूं। तो बौद्ध साध्वी ने उनको कहा कि आप बौद्ध धर्म स्वीकार करो और बौद्ध धर्म का प्रचार करने में हमको मदद करो। अशोक ने कहा ठीक है, और इसके कारण आप सब जानते हैं सम्राट अशोक बौद्ध बन गए। बौद्ध के कारण इन्होंने कई जगह पर स्तूप बनाए, कई जगह पर शिलालेख बनाए, क्या क्या करे, गुजरात में भी जूनागढ़ के पास में उसका शिलालेख है, कई जगह पर उन्होंने काम किया। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जो है, राज्य आश्रय मिल गया, उसके कारण बहुत ही सुंदर इससे उसकी प्रगति हुई, नहीं तो आस्ते आस्ते चलता था। ऐसे ही ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म जो है उसके बारे में देख लीजिए। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना तो जो ईसा मसीह जो था उसका जन्म जो है जेरूसलेम के अंदर हुआ, जेरूसलेम के अंदर ही उसको क्रूसिफिकेशन के फांसी जो क्रॉस है उसके ऊपर चढ़ाया गया, पर और वहां उसने अंतिम शरीर भी यहीं छोड़ दिया। परंतु उसके बाद उन्होंने जिसको पट्टर शिष्य बनाया सेंट पीटर को, वो सेंट पीटर जो है वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए रोम गया, रोम के अंदर वहां जाकर के रोम के बादशाहों को सिखाया क्रिश्चियनिटी का, और रोम के अंदर उन्होंने कारोबार अच्छा किया। रोम के सम्राट जो थे, रोमन सम्राट जो थे, रोमन एम्परर जो थे, इन्होंने बौद्ध क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और परिणाम रूप क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी की स्थापना जेरूसलेम में हुई, परंतु उसका प्रचार और मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु रोम बना, और रोम के बाजू में 10 किलोमीटर दूर जो है वेटिकन सिटी के रूप में वहां पर उनका मध्य केंद्र बिंदु बना, और आज भी क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसका केंद्र बिंदु जो है सत्ता का वो वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व के रूप में रिकग्निशन मिला हुआ है, और वहां से ही पोप जो है वो सारे ही क्रिश्चियन धर्म का कारोबार वहां से ही करते हैं। तो जेरूसलेम में नहीं हुआ, रोम में हुआ, वेटिकन में हुआ, कारण यही है कि राज्य आश्रय मिला इसके कारण। तो राज्य आश्रय जो मिलता है उस राज्य आश्रय की इम्पोर्टेंस को हम सबको समझना चाहिए। जब दुनिया का इतिहास, हम आध्यात्मिकता का इतिहास अगर हम समझें तो क्या होता है, आपको मालूम होगा कि पहले जो है ना राजाओं के द्वारा ही कारोबार होता था, और इसलिए तो भारतीय संस्कृति मानती है कि राजा कालस्य कारणम, राजा के द्वारा ही काल जो है, वर्तमान बातें जो है उसका निर्माण होता है। हर जगह पर ऐसा होता है। आज आप देखेंगे दुबई जो है, दुबई है मस्कत जो है, वो उसके जो वहां के शेख है वो बुद्धिमान है, वर्तमान दुनिया की बातों से अभिज्ञ है, जानकार है। इसलिए क्या किया इन्होंने, इसको कतार को, और मतलब वहां की एरोप्लेन सर्विस को, दुबई की मार्केट को, शेयर बाजार को, सबको इतना अच्छा बना दिया है कि दुनिया के अंदर आज न्यूयॉर्क और लंदन से भी दुबई आगे चला गया। हमारे देखो एंसेस्टर जो है श्री कृष्ण जो है वो भी राजकुमार थे, आपको मालूम है कि श्री कृष्ण राजकुमार थे, उसके मामा भी जो है कंस वो भी राजा थे, सब मतलब इस प्रकार से कौरव पांडव भी राजा ये थे, राजाओं का ही इतिहास भरा हुआ है। राम भी राजकुमार थे, राजकुमार के रूप में कारोबार इन्होंने किया। इनके साथी जो है सुग्रीव जो है वो भी राजकुमार थे, राजा थे, और उसके सामने जिसके साथ युद्ध हुआ, युद्ध किया, वो रावण भी राजा था, और रावण की रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को भी राजा बनाया, और सुग्रीव को राजा बनाने से पहले वाली जो है वो उसका राजा था, उसके हत्या करके वाली की जगह पर सुग्रीव को रखा। मतलब इतिहास जितना भी है, जितने भी स्थापनाएं हुई है धर्मों की, पहले शुरुआत के धर्मों की, वो सभी राजाओं के द्वारा अर्थात राज्य आश्रय के द्वारा हुआ है। सब इस्लाम धर्म जो है अब्राहम के द्वारा, इस्लाम धर्म जो आप लोगों ने सृष्टि चक्र का बराबर गोला देखा होगा तो उसमें पहला धर्म जो होता है अब्राहम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। वो अब्राहम भी राजा था और उसने ही इस्लाम धर्म की पहले हिंदू धर्म से अलग अलग पहली ब्रांच निकली हुई थी, तो वो भी राजा के द्वारा हुआ और उसके ही यादगार में उसके ही बच्चे के कारण बकरी ईद आज भी मुसलमान लोग मनाते हैं। तो ये राज्य धर्म के राज्य आश्रय के द्वारा ही धर्म की स्थापना होती थी। वो इसी प्रकार से दूसरा धर्म जो है जू धर्म, यहूदी इसको कहते हैं, यहूदी या तो जू धर्म जो है जिसके स्थापक जो है मोजिस थे। मोजिस जो है वो भी राजकुमार थे, मोजिस और उसका भाई था रामसे। मोजिस और रामसे दोनों भाई थे, आपस में लड़ने लगे तो कौन राजा बने कि जू धर्म यहूदियों का धर्म जो है, आपको मालूम होगा यहूदियों की बड़े पैमाने पर हिटलर ने हत्या किया हुआ था, तो जू धर्म का स्थापक मोजिस भी राजकुमार था वो, और उसका भाई रामसे, और उसमें दोनों के बीच में खटराग हुआ तो बड़े भाई ने छोटे भाई को गद्दी दे दिया और वो निकल पड़ा अपना धर्म की स्थापना करने के लिए। भारत के अंदर भी गौतम बुद्ध भी राजकुमार थे, राजा थे, और राजा के कारण राज्य धर्म का उसके द्वारा एक राजा के द्वारा स्थापना हुई। महावीर जी आपने सुना होगा, जैन धर्म के स्थापक महावीर जी, वो भी राजकुमार थे और राजकुमार के द्वारा स्थापना हुई। साउथ में भी आपको मालूम होगा, साउथ में जो यहाँ बैठे हुए उनको मालूम होगा, श्रवण बेला क्या कहते हैं उस प्रकार का है जहाँ पर ऋषभ देव की बहुत बड़ी लंबी मूर्ति है, और ऋषभ देव भी जो है ना वो भी राजकुमार थे। वो और उसके भाई के बीच में गद्दी के लिए झगड़ा हुआ, मारामारी हुई, तो उसके कारण उसका भाई जो है ऋषभ देव ने अपने भाई को पकड़ा और पकड़ करके उसको मारने के लिए मुष्टि ऐसा किया, वो ऐसा ऊपर किया, तब उसको ख्याल आया कि मैं क्या करता हूँ, एक राज्य के लोभ के खातिर मेरी भाई की हत्या करता हूँ। इसने भाई को छोड़ दिया और अपने बाल पकड़ करके बाल को खींच करके बाल निकाल दिए और फिर तीर्थंकर बन गए, और जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में पहला तीर्थंकर ऋषभ देव बने, वो भी राजकुमार थे। इस प्रकार से राज्य आश्रय और राजा के द्वारा कारोबार करने वाले जो है उसके द्वारा प्रचार अच्छा में अच्छे जैसे होता है। पहला साधारण घर में जन्म लेकर के राज्य धर्म की स्थापना करने वाला ईसा मसीह क्राइस्ट है, जो एक सुतार कारपेंटर का बच्चा था और कारपेंटर के बच्चे से होकर के उठ करके आगे बढ़ा। हमारे सिख धर्म के स्थापक जो है गुरु नानक देव, वो भी साधारण व्यापारी करने वाले, व्यापार करने के उनके बच्चे थे और इन्होंने धर्म की स्थापना किया। इस प्रकार से बाद में शुरू हुआ, बाकी पहले तो जो है सिंटो धर्म जापान के, वो तो राजाओं का ही धर्म था, राजाओं के द्वारा ही स्थापित और राजाओं के द्वारा पालना जिसकी हुई है उसको सिंटो कहते थे, और चाइना में भी लाओ जिसको ताओ कहते हैं वो भी राजाई परिवार के थे। तो इस प्रकार से राज्याश्रय के द्वारा कारोबार करने से बहुत अच्छी रीति से, सहलाई से, सहज रीति से पुरुषार्थ करने से आगे हम बढ़ सकते हैं। मैं राज्याश्रय का इसका मतलब ये नहीं कि राजा ही चाहिए, पर जिनके हाथ में सत्ता है, अनेक प्रकार की सत्ता है, आप जानते हैं शरीर की सत्ता होती है, धन की सत्ता है, राज्य की सत्ता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की सत्ता है, धन की सत्ता का भी फायदा ले सकते हैं। हम धन की सत्ता का फायदा लेने के लिए बाबा ने कहा हुआ है कि हमारा तन और मन और जो धनवान जो होते हैं उनका धन का सहयोग इस प्रकार से मिले तो ईश्वरीय सेवा बहुत जल्दी हो सकती है, और इसीलिए तो भारत सरकार ने CSR कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोग्राम बनाया हुआ है, और कम्युनिटी सर्विस कॉरपोरेट सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कानून बनाया हुआ है, भारत का कंपनीज एक्ट में परिवर्तन किया है, और हर एक कंपनी जो भी कॉरपोरेशन जो भी है जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करने वाली कंपनियों को अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो अलग करना पड़ेगा और 2% समाज की रक्षा करने के लिए, समाज में नैतिक मूल्य आदि जो भी है, नारियों का जीवन बढ़ाने के लिए, कहीं एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, इस प्रकार 9-10 उन्होंने बातें रखी हुई है उसके लिए खर्च करने का। बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज है, साधन है धन का, परंतु क्या करें, हम लोग मानते नहीं है, करते नहीं है। बाकी नहीं तो कपिल सिंबल जो है, जो पहले मनमोहन सिंह के जमाने में वित्त मंत्री थे, कपिल सिंबल ने कहा है कि 2% जो प्रॉफिट का अलग करने का है उसके कारण प्रति वर्ष, हर वर्ष याद रहे, हर वर्ष दुनिया के, मतलब भारत के जो भी कंपनियां हैं कॉरपोरेशन से अगर 2% निकालते हैं तो प्रति वर्ष 26,600 करोड़ रुपया समाज की सेवा के लिए निकल सकता है। 26,600 करोड़ रुपया। दुनिया के अंदर और संस्था वालों ने तो बहुत कुछ कारोबार कर दिया, और इस प्रकार से जो संस्थाएं जो भी कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा सहयोग लेकर के कारोबार करना शुरू किया। हम लोगों को भी, हमने 2 साल से हम सबको बता रहे हैं कि ये कारोबार करिए, समाज के अंदर जिसके पास धन की सत्ता है उनकी सेवा करिए, और उनके पास प्रोजेक्ट है, करने वाले कोई नहीं है, साधन नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है। तिरुपति के अंदर पे गया था, तिरुपति का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसने कहा कि हमारे पास तो कोई समर्पित है नहीं, कोई फ्री है, हमारे पास तो देखो 35,000 बहने हैं और 4-5,000 भाई समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई किसको कोई पगार नहीं मिलता है। कोई टीचर यहाँ बैठी है जिसको बाबा के घर से पगार मिलता हो? किसी को भी नहीं मिलता है, खाली खाना पीना और पालना होती है। और वहां पर क्या होता है, तिरुपति जैसे मंदिर के अंदर भी कोई भी समर्पित नहीं है। और उसने बताया कि हमारे यहाँ सब नौकर हैं, यहाँ बाबा के घर में कोई नौकर नहीं, हम सब बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे हैं, सब बच्चे समझते हो कि बाबा के नौकर समझते हो? सब अपने आप को बाबा के बच्चे ही समझते हैं ना, जो बाबा का नौकर है ऐसा समझते हो हाथ खड़ा करें, बाबा का नौकर, यहाँ कोई नौकर नहीं है, देखो कोई, मैं देख रहा हूँ कोई से नहीं बात, सब जो बाबा के बच्चे समझते हैं वो हाथ खड़ा करें, सब तो देखो हम बच्चे हैं, वारिस है बाबा के, वारिस है, दुनिया का कारोबार हमारे हाथ में बाबा देने वाले। और वहाँ क्या है, सब नौकर है। तो मैंने कहा इन नौकरों का क्या लक्ष्य होता है? इन नौकरों का उन्होंने बताया कि 3 प्रकार का लक्ष्य होता है कि हर महीने मास के आखिर में पगार कितना मिलेगा। हमारे पास किसी का भी ये लक्ष्य है हाँ कि हर महीने के आखिर में बाबा हमको पगार कितना देंगे? किसी के पास है? कोई सेंटर पर कोई बहन को नौकर के रूप में नहीं, पगार नहीं मिलता है। और फिर वर्ष के आखिर में बोनस कितना मिलेगा और इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, वही लक्ष्य है। उस पगार के कारण काम करने वाले हैं हम, यहाँ बाप के बच्चे बन करके, वारिस बन करके, बाप की संपत्ति को संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम कारोबार करते हैं। तो हमारे पास कितना सुंदर कारोबार होता है। तो इस प्रकार का कारोबार जो है हमारे हाथ में आया हुआ है। तो इसलिए राज्य आश्रय के द्वारा योग को दुनिया के सामने प्रसिद्ध करना है। आपको मालूम होगा एक हठयोगी जो है हरिद्वार देहरादून आदि में जो रहते हैं, उसने हठयोग के द्वारा कितना पैसा कमाया है आपको मालूम है? कितना कमाया है हठयोग के द्वारा सेवा करने से? उसने दवाइयां बनाई है, सूखे 1100 करोड़ रुपया उसने कमाया हुआ है पिछले 7-8-9 साल में। इतना कारोबार कर सकते हैं हठयोग के द्वारा। तो हम तो राजयोगी, हम कोई धंधे के लिए नहीं, परंतु हम इस प्रकार से राज्य आश्रय मिलता है, राज्य आश्रय मिला हुआ है और भारत सरकार के द्वारा और विश्व के सभी देशों के द्वारा मिलता है। आज देखो अशोक को खाली अपने राज्य के राज्य कारोबार का मदद मिली, महावीर जी को अपने राज्य के कारोबार की मदद मिली, पर हमारे पास बाबा ने क्या किया? दुनिया के सभी देशों के द्वारा हमको विचार पॉजिटिव में सबने अंगुली करके के यूनेनिमसली एक मत होकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात कही है। कितनी बड़ी बड़ी, बड़ी, बड़ी कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाबा ने हम बच्चों को तैयार करके दिया है। बाबा क्या कर सकता है? बाबा रास्ता दिखा सकता है, बाबा साधन बना करके दे सकता है, परंतु साधना तो हमें ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई बैठा हुआ है कि बाबा पुरुषार्थ करे और प्रारब्ध हमारा बनेगा? ऐसा कोई बैठा है? ऐसा कोई समझता है कि पुरुषार्थ बाबा करे और हमारा प्रारब्ध बनेगा? हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा और हमारा प्रारब्ध बनाना होगा। तो ऐसे ही बाबा ने साधन बना दिया, इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में साधन बना दिया, योग का कारोबार करने के लिए साधन बना दिया। तो क्या करना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। और इसलिए इस टाइम की मीटिंग जो है ना, उसके अंदर नक्की हुआ है, और हमारे आत्म प्रकाश भाई ने भी बहुत सुंदर बात कही है कि इस टाइम 21 जून आता है, तो जून मास का जो ज्ञानामृत का इश्यू जो है ना, वो ज्ञानामृत का इश्यू खास योग के बारे में ही छपेगा। योग के बारे में, योग क्या है उसके विधि व्याधि समझाने के लिए, योग के हमारे भाई बहनों के जो अच्छे अच्छे अनुभव होंगे वो उसके अंदर मैगजीन में डालेंगे। और इस प्रकार से योग की महिमा का कारोबार जो है हमारे ज्ञानामृत के द्वारा आत्म प्रकाश भाई करने वाले हैं। मीटिंग के अंदर ये भी बात निकली, इसके आधार पर एक बात निकली है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम ज्यादा तो फोर्स नहीं कर सकते, परंतु बाबा का मैगजीन अन्य भाषाओं में भी छपता है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उड़ीसा की भाषा है, बंगला भाषा में, ऐसे ऐसे भाषाओं में मैगजीन छपता है। उस भाषा के अंदर भी उस जून मास का जो इश्यू होता है, अगर वो भी इश्यू जो है इस प्रकार से योग के बारे में छपे, और पहले से ही आप नक्की करो कि हमको एक्स्ट्रा कितनी कॉपीज चाहिए, तो एक्स्ट्रा कॉपीज छपवाने के लिए चाहे जो ज्ञानामृत की एक्स्ट्रा कॉपीज चाहिए तो आत्म प्रकाश भाई से कहिए, लिखिए, एक्स्ट्रा कॉपीज लेकर के उसके द्वारा सेवा करिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। और एक बार हमने अच्छे रीत से मनाया तो लोगों को संदेश मिल जाएगा कि योग क्या है, योग के द्वारा स्वस्थ जीवन और संपन्न जीवन, ये इस वर्ष का मेन टॉपिक है, मेन थीम है। तो इस वर्ष योग की शक्ति, आप जानते हैं बाबा के ज्ञान का चार मुख्य सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उसमें ज्ञान और योग जो है वो मुख्य बात है, और ज्ञान और योग के आधार पर हमें अपने जीवन में धारणा करनी है, और उसके आधार पर हमको सबकी सेवा करनी है, और सेवा के द्वारा हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो इसलिए ज्ञान और योग, उसमें भी योग के ऊपर बाबा ज्यादा एम्फोसिस देते हैं। बाबा ने कहा हुआ है सबको, सुबह का 4 बजे का योग करने के लिए कहा है ना, सब करते भी हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो अमृत वेला का समय के अंग्रेजी में लोगों कहते हैं नेक्टर टाइम योग, तो इस प्रकार से अमृत समान हमको बनाने वाले ऐसा योग का समय जो है ब्रह्म मुहूर्त का योग और अनुभव कर सकता है। परसों रात को जो है हमारे यहाँ तीव्र पुरुषार्थी के लिए योग के 1 से 5 बजे तक रखा हुआ था, कहीं हमको मिले, इन्होंने कहा कि रमेश भाई इस टाइम पर हमने जो रात को यहाँ पर मधुबन के अंदर एसी हॉल के अंदर बैठ करके 1 से 5 तक योग किया, इतना सुंदर योग हमारा हुआ, इतना सुंदर अनुभव जो बाबा ने कराया हमको कभी भी अनुभव नहीं हुआ था। और एक बात आपको बता दूं, हम लोगों ने जो तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा योग किया, इस योग की सिद्धि का और इसके फल स्वरूप ही कल बाबा की पधरामणी हुई, ऐसे नहीं होती, परंतु हम लोगों ने तीव्र पुरुषार्थ किया और बाबा को कहा बाबा आपको आना ही है, आना ही है, आना ही है, तो इसके कारण क्या हुआ, बाबा ने भी हम बच्चों की भावनाएं जो है, हम बच्चों के पुरुषार्थ जो भी है, हम बच्चों का जो भी पुरुषार्थ योग किया, इन सब के रिटर्न में देने के लिए बाबा की पधरामणी हुई। और बाबा ने आकर के कल हम सबको अपना वायदा निभाया, भले अपना विचार जो क्या मधुबन सिवाय मैं किधर नहीं जाऊंगा उसको छोड़ करके भी अपने मुकरर रथ में ही आए और आकर के बहुत सुंदर थोड़ी शब्दों में ही बातें बताई, पर थोड़े शब्दों में भी बहुत कुछ बता दिया है। बाबा से ये सीखने का है कि कम शब्दों में ज्यादा बातें संदेश कैसे मिलता है सबको। दादी जानकी ने बहुत सुंदर एक क्लास कराया था कि हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है कि छोटी बात को कितनी बड़ी करें, और दूसरा है कितनी बड़ी बात को छोटी कितनी करें। जानकी दादी ने हंसते हंसते कहा था कि छोटी बात को बड़ी करना वो सबको आता है, बात छोटी होती है उसका बड़ा स्वरूप हो सकता है। आपको मालूम होगा दुनिया के इतिहास में सबसे छोटी बात का सबसे बड़ा रूप क्या हो गया, जिन्होंने शास्त्र पढ़े होंगे उसको मालूम है, शास्त्रों की बात है, कहानियों के रूप में है बातें, कि द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी उसके द्वारा एक छोटी सी बात कही गई है। दुर्योधन जो है उसके महल में आया था इंद्रप्रस्थ के, तो वहां पानी नहीं था तो भी समझा गया पानी है, और जहां पानी था वहां पानी नहीं है, इस प्रकार से उसके अंदर गया तो पानी में गिर गया। तब द्रौपदी ने क्या कहा मालूम होगा सबको, अंधे की औलाद अंधे, मालूम है ना शास्त्रों का, थोड़ा तो पढ़ा हुआ होगा, अंधे की औलाद अंधे, ये एक छोटी सी बात, कितनी छोटी सी बात, पंडित का कितना विशाल स्वरूप हो गया। दुर्योधन तब तक प्रेम प्यार से पांडवों के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार था, परंतु जो द्रौपदी ने ये टॉन्ट लगाया कि अंधे की औलाद अंधे, तब उसके मन में हो गया कि अभी तो मैं पांडवों के साथ बराबर वैर करूंगा, और उसके कारण उसने उनको जुआ खेलने के लिए बुलाया, और उस प्रकार से पांडवों को वनवास मिला, और उसके बाद कौरव पांडव का युद्ध हुआ। ये सब आप जानते हैं, एक छोटी सी बात कितनी बड़ी हो सकती है वो महाभारत हमको सिखाता है, महाभारत ऐसे ही कारोबार से होता हुआ है। तो इस प्रकार से छोटी बात को बड़ी करने में हम सब एक्सपर्ट है, सब एक्सपर्ट है। बाबा ने एक मूर्ति चलाई हुई है बहानेबाजी की, बहानेबाजी में बाबा ने कहा है कि बहाने बनाने में बाबा के सब बच्चे एक्सपर्ट है, उसमें सबका पहला नंबर है, किसी का दूसरा नंबर नहीं है। मैं आपको हंसी की बात सुना हूं, साकार बाबा के समय में बाबा कई बार कहते थे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते। मैं बाबा को कहता था बाबा ये नंबरवार शब्द नहीं चाहिए हमको, नंबर नहीं, नंबरवार नहीं चाहिए, एक बार बाबा के बन गए इसके बाद नंबर की क्या जरूरत है, सबका पहला नंबर होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा कहते थे नहीं बच्चे तुमको क्या मालूम, बाप जाने बाप अपने बच्चों को जानता है, बाबा जानते हैं कि बच्चे सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। मैंने कहा ठीक है आपको शब्द रखना है तो रखिए, बाकी मुझे तो ये नंबरवार शब्द पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ, अव्यक्त मुरली जब चली बहानेबाजी के अंदर, बहानेबाजी के ऊपर जब मुरली चली तो बाबा ने कहा कि सभी बच्चों का पहला नंबर है। तो बाद में मुरली पूरी हो गई, बाबा चोली बांटते थे, उस जमाने में तो थोड़ा छोटा परिवार था, हिस्ट्री हॉल में बैठे थे, तो जब मेरा टर्न आया तो बाबा ने मुझे टोली देखते हुए कहा कि बच्चा तुमको नंबरवार शब्द पसंद नहीं है ना, मैंने कहा हाँ, तो कहा आज मैंने वो शब्द निकाल दिया, सबको बहानेबाजी में पहला नंबर दे दिया, सबको बहानेबाजी में पहला नंबर। मैंने कहा बाबा बहानेबाजी में नंबर वार रखो, पुरुषार्थ में सबको एक समान रखो। बाबा ने कहा नहीं, बहानेबाजी में सबका पहला नंबर, हम सबका पहला नंबर है ना, बहाने बनाने में कितने हम होशियार होते हैं, ये नहीं हुआ ऐसा हुआ। परंतु बात यही है कि बड़ी बात को छोटी करना ऐसा तो होता ही है। इस प्रकार से ऐसे कर करके जानकी दादी ने कहा ये पुरुषार्थ की जरूरत है, नहीं तो क्या होता है बात को हम बड़ी कर देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, वो बात हमारे पांव के अंदर जंजीर के रूप में आ जाती है, और इसके कारण क्या होता है हमारा पुरुषार्थ में जो तीव्रता होनी चाहिए ना, जो वृत्ति कला का पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं होता है, ये करुण वास्तविकता है। तो इसलिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए छोटी बड़ी बात को छोटी करता, ऐसा तो होता ही रहता है, उसमें क्या हो गया, ऐसा होगा वैसा होगा जो भी होगा। आपको मालूम है तीन सन्यासी, तीन महारथी सन्यासी जैसे जिसका पुरुषार्थ है कि नरसिंह मेहता जो है उसकी जुगल ने शरीर छोड़ा, तो नरसिंह मेहता ने भजन बनाया कि भलू थे भागी जंजा सुखे भर सुश्री गोपाल, मतलब पत्नी ने शरीर छोड़ा तो भी खुश रहे। और दूसरा एक महाराष्ट्र का संत था तुकाराम करके, जो यहाँ महाराष्ट्र के भाई बहन बैठे होंगे उनको मालूम होगा, संत तुकाराम की पत्नी जो है ना, जैसे सोक्रेटिस की पत्नी जयंपती, सोक्रेटिस की पत्नी वो भी बहुत झगड़ा करने वाली थी, ये तुकाराम की पत्नी भी बहुत झगड़ा करने वाली थी, तो इसलिए तुकाराम ने अभंग बनाया, भजन बनाया कि अच्छा है हे भगवान तुमने हमको ऐसी झगड़ा करने वाली पत्नी दिया, नहीं तो मैं उसके मोह में फंसता तो आपको याद नहीं करता। तो इसलिए तुकाराम को झगड़ा करने वाली पत्नी मिली तो भी बहुत खुश है। और दूसरा ही इस प्रकार से दूसरा है नामदेव और एक और भी एक सन्यासी महात्मा हो गए महाराष्ट्र के, और उनकी पत्नी जो है बहुत साथ देते थे, हर बात में कदम मिला करके चलने वाली थी। तो उसने भगवान को कहा, अच्छा है भगवान आपने ऐसी पत्नी दिया हाँ कि वो मेरा साथ देती है। इसके कारण क्या है, मेरा उनके साथ संघर्ष में टाइम नहीं जाता है, मुझे हर बात में मददगार बनती रहती है मेरी जुगल। तो देखो बात वही होती है, चाहे साथी जो है सदी छोड़ता है या साथी जो है झगड़ा करने वाला होता है या तो साथी साथ देने वाला होता है, सबके आधार पर हमारे हाथों में है कि हम हमारे सामने आई हुई परिस्थिति को कैसे उसको इस्तेमाल करें। हमारे हाथों में, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, मातेश्वरी जी ने कहा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज नेवर रिपीट, एक बार जो तक मिलती है वो तक आगे बढ़ने के लिए जो मिलती है उसको स्वीकार करना चाहिए। परंतु तो क्या होता है, एक लेखक ने लिखा हुआ है कि जब लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना तो कई लोग मुख धुलाई करने को चले जाते हैं, इसलिए क्या होता है लक्ष्मी तिलक करके बिना चली जाती है। ऐसा ही होता है, हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आती है आगे बढ़ने की आती है, उस टाइम पर हम फालतू बातों में इतने चले जाते हैं कि जो चांस मिलता है, जो चांस के आधार पर बाबा ने कहा हुआ है, जो चांस मिलता है चांस लेता है वो चांसलर बनता है। बुल्ली याद होगी आप सबको, चांस जो स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है वो चांसलर बन जाता है। हमको अभी 21 जून का प्रोग्राम जो है उससे चांस के रूप में मिला हुआ है। 21 जून के प्रोग्राम को अच्छे रीत से मनावे और सारे भारत के अंदर, जो बाबा ने पिछले मुरली में भी कहा कि कोई भी ऐसा ना रह जाए जिसको बाबा का संदेश नहीं मिले कि बाप आया हुआ है। तो ऐसा चांस लेकर के ऐसे 21 जून के वायुमंडल भी हमारे साथ में होगा, भारत सरकार भी साथ में है। आपको मालूम नहीं है, मैं आपको बताऊं, 21 जून का प्रोग्राम यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वहां पर मनाने वाले हैं, और भारत का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वो दोनों ही यूएन में जाकर के वहां पर जो उद्घाटन होगा यूएन के प्रमुख के द्वारा, उसके साथ खड़ा होकर के मिल करके दुनिया के कई देशों के मुख्य वहां पर आएंगे और सबकी उपस्थिति में 21 जून का आरंभ होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। देखो इतना सुंदर बाबा काम करके देता है, भूमिका बना करके देता है, विषय का बैकग्राउंड बना करके देता है। अब इस अपॉर्चुनिटी जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना वो हमारे हाथों में है। भारत सरकार ने, बाबा ने मेहनत किया और यूएन के द्वारा भी होता है। मैंने आपको बताया ना, हाँ अशोक को या तो गौतम बुद्ध को या तो जो भी है महावीर जी को, उन सबको एक ही राज्य का सहकार मिला है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बाबा ने ऐसी भूमिका बनाई है, बैकग्राउंड बनाया है कि दुनिया के सभी देशों ने एक आवाज से अंगुलियां उठा करके कहा कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। कितनी बड़ी बात है, परंतु क्या होता है, हम बड़ी बात होती है परंतु उसके बाद उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो नहीं करते हैं, वास्तविकता है, करुण वास्तविकता है। हमने तो मीटिंग में ये बात निकाली है कि सभी सेंटर के ऊपर उस दिन के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहिए। बड़े ब्रिजमोहन भाई ने बताया कि दिल्ली के अंदर CD4 सेंटर जो है उसको बुक किया हुआ है और कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तो यूएन में जाएंगे, तो भारत के गृह मंत्री आदि को बुलाएंगे। ऐसे हर स्टेट के अंदर, हर स्थान के अंदर वहां के जो VIPs आदि जो भी है उसके द्वारा सेवा करें और सेवा कर करके प्रचार करें, प्रसार करें। हमारे बॉलीवुड स्टूडियो वाले भी इसके लिए बना रहे हैं, योग का दिन का महत्व बनाने के महत्वता इम्पोर्टेंस सबको बताने के लिए। अखबारों के लिए भी आप कर सकते हैं, अखबारों में आर्टिकल भी छपवा सकते हैं, क्योंकि उस दिन अखबार वालों को भी मालूम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो इसलिए क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमारे पास ऐसे लेख आवे हम उसको प्रिंट करें, तो ऐसे लेख भी लिखवा करके भेज सकते हैं। ऐसी मीटिंग में ये भी बात निकली कि कहीं जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा सभी मैगजीन के अंदर हमारी 21 जून का ऐसा जून मास का इश्यू में योग का मुख्य लक्ष्य से मैगजीन छपनी चाहिए। ऐसे ही कईयों ने कहा कि योग की नई प्रदर्शनी बना करके योग क्या है वो समझाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए, और कई जगह पर योग की प्रदर्शनी कर सकते हैं, कई जगह पर योग के ऊपर सेमिनार रख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रख सकते हैं। और इसलिए तो इस वर्ष का रखा है टाइटल, लक्ष्य रखा है सहज योग के द्वारा स्वस्थ और संपन्न समाज। तो स्वस्थ और संपन्न समाज बनाने के लिए योग का, और भी सहज राजयोग लिखा हुआ है, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि योग बहुत कठिन है, क्या क्या होता है हमको मालूम है। मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क में हम गए थे, वहां पर प्रदर्शनी के लिए हमको टेबल की जरूरत थी, तो हमने टेबल के लिए वहां एक फर्नीचर वाला जो किराए पर देता है उसके पास गए। इन्होंने कहा हम आपको दे सकते हैं फर्नीचर फ्री में, पर तो हमारे बॉस जो है सेठ जो है उसको आप मिलो। उसके सेठ को हम मिले तो हमने उनको कहा हमारी योग की प्रदर्शनी करने के लिए हमको टेबल चाहिए। तो कहा योग तो बहुत कठिन चीज है, कैसे हम आप सिखाते हैं। मैंने कहा इजी में इजी चीज होती है तो ये योग है, हठ योग नहीं है, ये राजयोग है। इसके अंदर शारीरिक प्रक्रिया इतनी नहीं करनी पड़ती, बहुत अच्छी बात है। उसको आधा घंटा घंटा हम लोगों ने समझाया तो उसने वो टेबल जो है 15 दिन के लिए फ्री दे दिया। कारण यही है कि लोगों में पहले भ्रांति थी कि योग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हमने इस टाइम के टॉपिक में, थीम में रखा हुआ है सहज राजयोग, ताकि सबको मालूम रहे राजयोग जो है सहज है, इजी है। अंग्रेजी में कहते हैं इजी राजयोग, तो इजी राजयोग सहज राजयोग के द्वारा समाज के अंदर स्वस्थ समाज और संपन्न समाज। कई लोगों ने मीटिंग में बात कही सुखी समाज की रचना करनी चाहिए। बाबा ने कल भी जो रिवाइज मुरली जो है ना उसके अंदर भी बाबा ने कल कहा था कि संपन्न समाज, संपन्नता में सब आता है, सुख भी आता है, शांति भी आती है, प्रेम भी आता है, आनंद भी आता है, उमंग उत्साह सब आता है एक संपन्न समाज के अंदर। सुखी समाज के अंदर सिर्फ सुख ही आएगा। सुख क्या होगा? सुख कंपेरेटिव शब्द है, गीता में भी है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया तत्व उद्याय उद्देश्य हे अर्जुन। सुख दुख लाभ लाभ और जय और पराजय, इन सब के बीच में से युद्ध के लिए तुम हे अर्जुन उठो उठो। तो सुख और दुख ऐसी बात है जैसे दिवस और रात होती है, जुड़वा है। दिवस है सूर्य है तो दिवस है, सूर्य नहीं अंधकार है तो रात हो जाती है। इस प्रकार सुख और दुख रिलेटिव शब्द है, परंतु संपन्न समाज में सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए संपन्न समाज की रचना के बारे में जो मीटिंग में नक्की हुआ है, इसलिए मैंने आपको आज का दिन जो है क्लास कराने का जो ये चांस मुझे मिला हुआ है, मैंने इसलिए आप सबके सामने रखा कि आप सब हम सब मिलकर के ये जो हमारा क्लास जो है कई सेंटरों के ऊपर भी कई बहन भाई सुन रहे हैं, तो इन सबको हमारी नम्र विनंती है कि 21 जून का कार्यक्रम अच्छे में अच्छी इसे मनावे। और बाबा ने जो हम बच्चों को चांस दिया है सेवा करने का और बैकग्राउंड बना करके दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल योग के रूप में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सबने उसको मंजूर किया हुआ ऐसा टूल जिसको कहते शस्त्र जो कहते हैं बाबा ने बना करके दिया हुआ है। अभी उसके ऊपर हमें नक्की करना है कि हमें उसको चलाना है या नहीं, इसको क्या करना है। विहंग मार्ग की सेवा की बात मैंने लिखा हुआ था ज्ञानामृत में कि जब बाबा ने कहा बाबा को मैंने कहा कि बाबा हमको विहंग मार्ग के साधन बना करके दो तो हम विहंग मार्ग की सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि मैं मेरे बच्चों को जानता हूँ, मैं विहंग मार्ग की साधन दूंगा ना तो साधन एक कोने में रखेंगे और उसके ऊपर मकड़ी की जाल बन जाएगी, पड़े रहेंगे साधन ऐसे बर्बाद होते रहेंगे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा ऐसा नहीं है, हम वायदा करते हैं आप विहंग मार्ग की सेवा का साधन देंगे तो हम विहंग मार्ग की सेवा के लिए विहंग मार्ग का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। हमने उस टाइम पर साकार बाबा को गारंटी दिया था। और अभी ये 21 जून का कार्यक्रम जो है एक विहंग मार्ग की सेवा का साधन बाबा ने दिया हुआ है। अब बाबा ने जो कहा हुआ है कि साधन ऐसे पड़े रहेंगे उसके ऊपर मकड़ी की जाल बन जाएगी, ये हमें करना है यहाँ तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा को कहेगा आपने जो साधन दिए हैं उसके द्वारा श्रेष्ठ साधना करके श्रेष्ठ संदेश दे करके सारे मानव समाज के अंदर राजयोग की परिस्थिति जो है, राजयोग की जो विधि जो है, राजयोग का लक्ष्य जो है, राजयोग से जो प्राप्ति होती है वो सारी दुनिया को बताने का कार्यक्रम करना चाहिए। 21 दिन तो खाली एक दिन है, परंतु जैसे हमने आपको बताया कि इस वर्ष का थीम भी रखा हुआ है सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ और संपन्न समाज, तो सारे वर्ष इस प्रकार की सेवा करें। हमारे जितने भी विंग्स के बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, या तो नेशनल कोऑर्डिनेटर है या तो मधुबन कोऑर्डिनेटर है, इन सबको हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वर्ष की जो भी कॉन्फ्रेंसेज आदि करें उसके अंदर योग के बातों को उठा करके करें, योग का कारोबार सबको बतावें, ताकि विभिन्न प्रोफेशंस के लोग भी समझें कि उनके योग उनके प्रोफेशन में उनके व्यवसाय के अंदर भी योग जो है, योग का कार्यक्रम जो है सहज हो सकता है। सबको जरूरत है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे प्रधान प्रोफेसर आदि जो भी है, चाहे बहने हैं, चाहे कोई भी है, सबके जीवन के अंदर सुख और संपन्न जीवन बनाना है तो योग को और योग की विधि को धारण करो। ये हमारे हाथों में है, इसलिए बाबा ने तो साधन दे दिया। अब देखते हैं 21वीं जून के कारोबार के अंदर हमारे ही दैवी परिवार कितना कारोबार करता है, कितना इस प्रकार के बाबा के द्वारा मिला हुआ इस साधन का कितना श्रेष्ठ उपयोग करते हैं। आप सब क्या मानते हैं, श्रेष्ठ उपयोग करेंगे? जो करने के लिए तत्पर है वो हाथ तो खड़ा करें कि हम 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग का दिवस जो है उसको अच्छे रीत से मनाएंगे, वो हाथ तो खड़ा करें। कई बहनों ने नहीं किया, मानते हैं कि नहीं करेंगे। भाइयों में तो बहुत करके सब ने किया, एक भाई नहीं करता है, सोच रहा है क्या? तो इसलिए सब आप सबने हाथ जब खड़ा किया है तो याद रहे आप सबने बाबा से प्रॉमिस किया है कि हम 21 जून का कार्यक्रम को अच्छे में अच्छी रीत से मनाएंगे, ठीक है ना? हम बाबा को संदेश में यही कहेंगे, मैं अभी गुलजार दादी के पास जाऊंगा बॉम्बे में, तो दादी को कहूंगा कि हमारे सभी भाइयों बहनों ने मिलकर के 21 जून का कार्यक्रम अच्छे में अच्छी रीत से मनाने का कारोबार किया है, और फिर मैं गुलजार दादी को कहूंगा कि आप बाबा को जाकर के कहना हाँ कि 21 जून का कार्यक्रम अच्छे में अच्छी रीत से हमारा दैवी परिवार मनाएगा और बाबा की मदद मिल जाएंगी तो अच्छे में अच्छा कारोबार कर करके योग की प्रतिष्ठा, योग का कार्यक्रम, योग की विधि भारत के सभी देश और विदेश के सभी देशों के अंदर आम रूप में योग की प्रतिष्ठा बढ़ाने का हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना? मैं संदेश भेजू ना बाबा को आप सबकी ओर से कि हम अच्छे में अच्छी रीत से योग का कार्यक्रम 21 जून का मनाएंगे। 21 जून की बात निमित्त है, परंतु इस वर्ष जो हमने थीम बनाया है सहज राजयोग के द्वारा स्वस्थ और संपन्न समाज, तो इसलिए उसकी स्वस्थ में सब कुछ आता है, मेंटल हेल्थ आता है, फिजिकल हेल्थ सब प्रकार की बातों का आता है, और संपन्न में सब प्रकार के वैल्यूज संपन्न जीवन बनेगा। इस प्रकार से योग का कारोबार जो भी है वो हम दुनिया के सामने रखेंगे, और इस प्रकार से राज्य आश्रय जो है, चाहे धन का आश्रय कहो, राज्य सत्ता का आश्रय करो, जो भी कहो, इसके द्वारा जो निमित्त बनकर के प्रोग्राम मिला हुआ है बाबा ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, गॉड सेंट परमात्मा के द्वारा दी गई बहुत सुंदर तक है, अपॉर्चुनिटी है, अब हमारे हाथों में है, हम उसके आधार पर कितना और कहाँ तक और कैसे उसको मनावे। मैं ये तो यही अंत में कहूंगा आप सबको कि ये हमारा 21 जून का कार्यक्रम अच्छे मच्छी रहे। बाकी तो ये क्या, इस सीजन का बाबा का कल मुरली का लास्ट डे था, इस सीजन का अभी अक्टूबर में शुरुआत होगी नई सीजन की, इस प्रकार से हमारा भी इस सीजन का लास्ट क्लास है आप सबसे मिलने का, फिर अक्टूबर मास में फिर बाबा की सीजन शुरू होगी, बाबा आएंगे तो इस प्रकार से फिर उस टाइम पर बाबा की मुरली के बाद में इसके ऊपर विचार सागर मंथन करेंगे। आपको एक बात फिर से याद कराऊं, ऐसा मत समझो कि कल बाबा नहीं आए इसलिए हमेशा के लिए बाबा नहीं आएंगे, ये गलत मान्यता गलत भ्रांति के आधार पर अपना समय मत बिगाड़ना। बाबा का जो वायदा है वो बाबा वो वायदा को निभाएगा। हमारे गीत बजाने वाले अगर उनके पास गीत हो जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, उसको बजावे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और पक्का हो जाएगा। हाँ कि बाबा ने जो बाबा ने अपना वायदा निभाया है अब हमारे हाथों में है, हमने बाबा के साथ जो वायदा किया है उसको हम निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। तो आप कोशिश करना, अगर आप ही आसपास यहाँ गीत हो तो बजाना, नहीं तो ठीक है। आप सेंटरों पर तो सबके पास होता ही है, आप जब सेंटरों पर जाओ तो ये गीत बजाना सुनना कि जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गीत है और इसके लिए बाबा ने खुद ने अपना वायदा निभाया है। तो अभी हमारे हाथों में है कि हमें भी जो वायदा बाबा के साथ किया हुआ है उसको निभाना पड़ेगा। आप सबको वायदा निभाने में बाबा की मदद मिले, बाबा की शक्ति मिले, यही मेरी शुभ भावना है। और मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से हम 21 जून का अर्थात बाबा के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अच्छे में अच्छी रीति से मनाने का पुरुषार्थ करेंगे और बाबा की मदद से हम अच्छे में अच्छा कारोबार कर सकेंगे, यही हमारी शुभेच्छा है। ओम शांति।
आना पड़ेगा जो वादा किया।